आज है 25 दिसंबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। भारत और रूस ने किए 16 समझौतों पर हस्ताक्षर।
इट हैज बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सक्सेस फॉर इंडिया इन डिफेंस डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी।
नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा समाप्त, पहुंचेंगे अफगानिस्तान, करेंगे संसद भवन का उद्घाटन। भारत प्रशासित कश्मीर में कैसे बना रग्बी, लड़कियों का खेल।
मैंने सोचा था मैं भी करूँ रग्बी, कि मैं भी आगे बढ़ूँ जेके रग्बी में, क्योंकि रग्बी का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लड़कियों का इस स्तर पे, क्योंकि लड़कियाँ रग्बी नहीं खेलती। जब से मैंने रग्बी देखा तो सारी लड़कियों ने इसे पार्टिसिपेट किया, नेशनल्स खेल बहुत आगे जाए।
सुनेंगे वॉशिंगटन डायरी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान क्रेमलिन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा कि भारत रूस को एक भरोसेमंद मित्र मानता है। मोदी ने कहा कि भारत और रूस अब अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक मोर्चे पर अधिक सक्रियता से सहयोग कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में समझौते के तहत दमिश्क के बाहरी इलाकों से पीछे हटने के लिए तैयार हो गए हैं। सीरिया के घटनाक्रम पर नज़र रखने वाली ब्रिटेन स्थित संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने यह जानकारी दी है। संस्था का ये भी कहना है कि घायल सैनिक और आम लोग यरमुक फलस्तीनी शरणार्थी शिविर और नज़दीकी हज़र अल अस्वाद और अलकदम ठिकानों को जल्द ही छोड़ देंगे। दक्षिणी अमेरिका में कई चक्रवाती तूफानों ने तबाही मचा दी है और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। इन तूफानों की वजह से इंडियाना और अरकनसॉ में कई लोगों के घर टूट गए हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली का संकट बना हुआ है। बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होने की खबरें हैं और मिसिसिपी के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। खबरों के अनुसार मिसिसिपी से शुरू हुआ एक बड़ा चक्रवात टेनेसी काउंटी की तरफ बढ़ रहा है। टेनेसी काउंटी के शरीफ निकी वीम्स कहते हैं,
We've had several homes destroyed in our community. This area here on the Coon Creek area is just one of the.
हमारे इलाके में कई घर बर्बाद हो गए हैं। लोगों को अपनों से जुदा होते हुए और उनके घरों को टूटता हुआ देखना बहुत ही दुखदायी है। ऐसा कभी भी होना गलत है, लेकिन साल के इस वक्त ऐसा होना और भी ज़्यादा दुख देता है, जब लोग क्रिसमस और नए साल की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं सभी से विनती करता हूँ कि यहाँ फंसे लोगों के लिए सब मिलकर दुआ मांगें। टेनेसी काउंटी के शरीफ निक वीम्स के शब्द। श्रीलंका में कैथोलिक चर्च ने एक निर्देश जारी करते हुए त्योहारों के दिन सभी चर्चों में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चर्च ने इस तरह का दिशा निर्देश जारी किया हो। ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत पर कोलंबो में फादर इग्नेटियस वर्ना कुलासिंगम ने बीबीसी को बताया कि क्रिसमस ट्री धार्मिक चिन्ह नहीं है और इसका व्यवसायीकरण हो चुका है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने 70 कथित माओवादियों के आत्मसमर्पण का दावा किया है। समर्पण करने वालों में 15 महिलाएं भी शामिल हैं। बस्तर के आईजी पुलिस एसआरपी कल्लूरी के अनुसार समर्पण करने वाले सभी माओवादियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। इन कथित माओवादियों से पुलिस ने 2 देसी बंदूक, 1 पाइप बम और IED बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि हाल के वर्षों में ये माओवादियों का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है। सीरिया की सरकार देश में 4.5 वर्ष से जारी संघर्ष का राजनीतिक समाधान तलाशने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में शांति वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2 दिन की यात्रा पर रूस गए नरेंद्र मोदी का कहना था कि दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी हुई है। दोनों देशों ने करीब $7 अरब की सहमतियों पर हस्ताक्षर किए और इनमें से ज्यादातर रक्षा के क्षेत्र में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पुतिन ने बताया कि रूस अगले 2 दशकों में 7 परमाणु संयंत्र का निर्माण करेगा। पूरे ब्यौरे के साथ अमल चौधरी।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने ट्वीट में ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त बयान में कहा कि भारत में कामोव 226 हेलीकॉप्टर बनाने पर हुआ समझौता मेक इन इंडिया के तहत पहली बड़ी रक्षा परियोजना है। मोदी ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को लेकर हमारे बीच सहयोग बढ़ रहा है। भारत में दो जगहों पर 12 रूसी परमाणु रिएक्टर बनाने के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा।
मिस्टर प्रेसिडेंट, आई हैव ऑलवेज हैड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एप्रिशिएशन फॉर योर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
राष्ट्रपति पुतिन, मेरे मन में आपकी सामरिक भागीदारी के लिए हमेशा से बहुत सम्मान रहा है। यह भारत की रक्षा, विकास और कूटनीति की शक्ति और सफलता का एक अहम स्रोत है और हमारे लोगों के बीच हमेशा से ही सद्भावना और आपसी सम्मान रहा है। जब मैं भविष्य में देखता हूं तो भारत के आर्थिक परिवर्तन में रूस का अहम योगदान देखता हूं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि रूस भरोसेमंद मित्र है जिसने हमेशा कठिन वक्त में भारत की मदद की है। उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी जारी रखना चाहता है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समझौतों के एक बहुत ही अहम हिस्से के बारे में बताया। उन्होंने कहा,
достигнута договоренность о выделении индийской страной еще одной площадки под строительство энергоблоков российского дизайна.
हम दोनों ही एक समझौते पर पहुंचे हैं जिसके चलते रूस अगले 20 वर्षों में भारत में 6 परमाणु संयंत्रों का निर्माण करेगा। इसमें यह देखना जरूरी है कि हम इसके लिए सबसे नई तकनीक के परमाणु संयंत्र VVR 1200 का इस्तेमाल करेंगे। ये तकनीकी रूप से तो सबसे बेहतर हैं ही, साथ ही सबसे ज्यादा सुरक्षित भी हैं। हमने संदर्भ में एक साल पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ऐसे में ये उसी समझौते को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन समझौतों में मुख्य रूप से दोनों देशों के नागरिकों और राजनयिक पासपोर्ट रखने वालों की आवाजाही के लिए कुछ श्रेणियों में नियम कायदों को सरल बनाया जाएगा। हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। साथ ही भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने और ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सहयोग पर MOU और रूस में तेल खनन को लेकर समझौते शामिल हैं।
रूस और भारत में हुए 16 समझौतों पर हस्ताक्षर, ये थे अमल चौधरी। इन समझौतों के बाद भारत के विदेश सचिव JS जयशंकर ने भी पत्रकारों से बातचीत की। मैंने मॉस्को में मौजूद पत्रकार विनय शुक्ला से इस बारे में और जानकारी मांगी।
विदेश सचिव जयशंकर ने कहा कि जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, वो उसने ये दर्शाती है ये वार्ता कि रूस और भारत वास्तव में जो है असली मायनों में सामरिक साझेदार हैं और जो समझौते किए गए हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के जो लॉन्ग टर्म और जो राष्ट्रीय हित हैं उनके अनुरूप हैं, दोनों की एक जैसे और दोनों दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है
जी। वहीं 16 समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच, जिसमें मुख्य तौर पर हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र में सहयोग शामिल है। वहीं रूसी रिएक्टरों का भारत में निर्माण किए जाने पर सहमति बनी है। ये जानना चाहेंगे कि मेक इन इंडिया को लेकर भारत का कितना जोर रहा वहाँ पर।
सबसे बड़ी बात है कि विदेश सचिव जयशंकर ने कहा कि जो कामोव 226 हेलीकॉप्टरों का जो इंटर गवर्नमेंट सरकारी जो समझौता किया गया है वो भारत के इतिहास में पहला जो है समझौता है इस तरह का रक्षा क्षेत्र में, तो ये कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इस समझौते ने विदेशों के साथ भारत की जो मेक इन इंडिया वाली जो डिफेंस की जो नीति है उसका श्री गणेश किया है और अब जो है इसके अंतर्गत जो है एक संयुक्त उद्यम बनेगा और उसके बाद देखा जाएगा कौन कब ये इसका उत्पादन आदि शुरू होगा। इससे दोनों देशों के बीच बहुत सारे क्षेत्रों में जो सहयोग है वो बढ़ेगा। एक जैसे समझौता है हाइड्रोकार्बन का, मतलब खनिज तेल और गैस का, उसके अंतर्गत ये होगा कि भारत जो है रूस के जो खनिज तेल के और प्राकृतिक गैस के जो उत्पादक क्षेत्र है ना उसमें हिस्सा ले रहा है। भारत की वो ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी है और साथ में जो रूस का गैसप्रोम जो कंपनी है जो गैस बनाती है वो तरल गैस को भारत को सप्लाई करने का जो है गेल के साथ उसका फैसला हुआ है। तो इस तरह से जो कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी कहा और विदेश सचिव ने भी कहा, दोहराया कि ये रूस जो है भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसका एक बहुत बड़ा गारंटर होगा।
जी, वहीं सौर ऊर्जा को लेकर भी खासा जोर है भारत में इन दिनों, उसको लेकर किस तरह से सहयोग करेगा रूस?
एक और फैसला किया गया है वो सौर ऊर्जा के उसमें कि वहाँ भी भारत में रूस तरह का संयंत्र लगाएगा सौर ऊर्जा में, उसकी अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, पर इतना है कि सौर ऊर्जा में दोनों देश सहयोग करेंगे। वो दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आतंकवाद की समस्या को पर बातचीत हुई है और भारत और रूस ने अपने सहयोग के वक्तव्य में कहा है कि सीरिया और इराक में शांति के रास्ते, शांति के जरिए, शांतिपूर्ण वार्ता, राजनीतिक वार्ता के जरिए जो है शांति पुनः स्थापित की जाए और दोनों देश जो हैं आतंकवाद से संघर्ष के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और सहयोग करेंगे।
कई अहम सहमतियों पर किए रूस और भारत ने हस्ताक्षर, ये थे मॉस्को से विनय शुक्ला। अपनी रूस यात्रा को समाप्त कर नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान का रुख करेंगे। वहां वे काबुल में भारत की ओर से अफगानिस्तान को भेंट किए गए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। भारत और पाकिस्तान जहां समग्र बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं, वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तल्खी नजर आ रही है। ऐसे में अफगानिस्तान क्या उम्मीद कर सकता है भारत से? हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रह चुके राकेश सूद से बात की और उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा कूटनीतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है।
मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की यात्रा उनकी बहुत अहम है। वो पहली दफा अफगानिस्तान जा रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर काफी उनके जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर काफी बदलाव आए हैं, क्योंकि पिछले साल जब अशरफ घनी वहाँ राष्ट्रपति बने थे तो उस समय जो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ उन्होंने दिए थे, यहाँ पर कई लोगों को यह लगा कि वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध अच्छे करने के बहुत इच्छुक हैं और इसलिए उन्होंने अपनी भारत की यात्रा भी इस साल अप्रैल में हुई, पर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर इसके बावजूद कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाने की चेष्टा की पर उसका कोई खास नतीजा नहीं हुआ, यानी तालिबान के अटैक जो थे वो उसी तरह कायम रहे। तो इसलिए प्रेसिडेंट अशरफ घनी ने उस समय काफी तीखी बातों से पाकिस्तान की आलोचना की और उसकी पॉलिसी की निंदा भी की। तो मेरे ख्याल से अब प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना एक तरह से एक खुद जायजा लेने वाली बात। इससे पहले आपको याद होगा कि उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हनीफ अतमर वो यहाँ आए थे अभी एक दो महीना पहले, उनके डिप्टी विदेश मंत्री जो हैं हिकमत कारजाई वो भी इधर आए थे और वो भी यहाँ पर हम लोगों को अवगत करवा के गए कि वहाँ पे क्या स्थिति है। एक तरह से अच्छा है और ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो कुछ सिक्योरिटी की वजह से डिले हो गया कि पार्लियामेंट बनाना था और अब वो बन चुकी है वो बिल्डिंग, तो एक तरह से उस पार्लियामेंट का हैंडओवर करना वो जरूरी है। 2005 में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे तब उस समय इकट्ठे उन्होंने प्रेसिडेंट कारजाई के साथ उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, उसकी नींव रखी थी। तो मैं समझता हूँ ये नेबरहुड के अंदर सार्क के मेंबर कंट्री के तहत ये एक अच्छी विजिट होनी चाहिए, हालांकि बहुत छोटी विजिट है।
ये पाकिस्तान के लिहाज से, अगर पाकिस्तान के एंगल से इसे देखा जाए इस यात्रा को, तो उसका क्या अर्थ है?
पाकिस्तान, नवाज शरीफ तो वहाँ कई दफा हुआ है और प्रेसिडेंट अशरफ घनी भी कई दफा पाकिस्तान हुआ है, एक से ज्यादा दफा पाकिस्तान हुआ है। अभी पीछे वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भी गए थे और तो इसलिए उनकी तो चेष्टा है कि पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुकात अच्छे रखें और पाकिस्तान हमारी ये तालिबान के साथ जो पीस प्रोसेस है उसमें मदद करे। पर तालिबान के साथ पीस प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसे सवाल हैं जो अशरफ घनी ने सामने रखे और जो हनीफ अतमर आए थे उन्होंने भी रखे कि भाई हम तालिबान में बात करें तो किससे करें, ये नहीं मालूम होगा कि किससे बात करें तो फिर ये नहीं मालूम होगा कि उनकी बॉटम लाइन क्या है। तो एक तरह से कुछ आपस में विभिन्न तालिबान के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ है और पाकिस्तान बेहतर जानता है इसको, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान ISI के तो तालिबान के साथ बहुत ही गहरे घनिष्ठ संबंध है। तो हो सकता है प्रेसिडेंट अशरफ घनी इसके बारे में खुलकर प्रधानमंत्री मोदी से बात करें और हमको इस बात से अवगत करवाएं कि देख क्या उनको कठिनाई हो रही है ये अपनी पाकिस्तान पॉलिसी।
अच्छा, ये अभी अफगानिस्तान एक कठिन दौर से गुजर रहा है 9/11 के बाद से अगर देखा जाए तो ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री से अभी इस यात्रा से अफगानिस्तान को क्या उम्मीदें होंगी?
अफगानिस्तान चाहता है कि उसकी एक मजबूरी है पाकिस्तान के साथ बातचीत करना, पर वो चाहता है कि हिंदुस्तान ने जिस तरह अफगानिस्तान की भरपूर मदद की है उसकी रिकंस्ट्रक्शन में, वो पीछे आपने देखा होगा कि हम उन्होंने हमारे साथ एक स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भी दोबारा से रिश्ते कायम करने की बात की। अभी हमने तय किया था कि हम उनको 4 B-17 हेलीकॉप्टर देने वाले हैं और ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो एक डिफेंस के स्तर पर, सिक्योरिटी के स्तर पर भी हमारी बातचीत और हमारा जो आदान प्रदान है, हमारे जो संबंध हैं, मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में वो और सुदृढ़ होंगे।
पूर्व राजदूत राकेश सूद से बात कर रहे थे रोहित जोशी।
ज्योति कलश छलके
तेरे मेरे मिलन की ये रहना।
सिने राग, संगीत के वो सुर जिन्हें सुनकर सुध बुध खो बैठे आप।
पास आइए के हम नहीं,
सुर जो खोल दें यादों के पिटारे।
मन रे तू काहे ना धीर धरे।
मेरे सामने आ गया ना वो, तो उस कुत्ते को वहीं जान से मार दूंगा।
इंसानी सुख दुख, राग द्वेष,
बाबूजी मैं कह रहा हूं बाबूजी,
और प्रेम की कहानी।
बहुत अच्छी हिंदी बोलती है।
अचला शर्मा का लिखा
और परवेज आलम का निर्देशित नाटक बंधक।
जमकर के बोलो। आपके
बीता एक और साल।
किसने क्या पाया और क्या खोया।
आपके सपनों को शब्दों में रखो।
अंतर्राष्ट्रीय पटल की उथल पुथल।
अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर।
पहली सी मोहब्बत,
साथ ही याद मलिका तरन्नुम की।
से पहली सी मोहब्बत,
बीबीसी हिंदी रेडियो के वर्षांत कार्यक्रमों की सौगात। 25 दिसंबर 2015 से
भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में और सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में।
और आज क्रिसमस है और ब्रजेश उपाध्याय की माने तो सेंटा थोड़े असमंजस में है। ऐसा क्यों, जान लेते हैं वॉशिंगटन डायरी में ब्रजेश उपाध्याय से।
Dashing through the snow in a one horse open sleigh।
क्रिसमस का मौसम है लेकिन सेंटा कुछ कंफ्यूज्ड सा घूम रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि हर साल की तरह हो करके हंसे या फिर किसी क्रिसमस ट्री के पीछे दुबक कर बैठ जाए। बरसों से वो एक ही काम करता आया है, साल भर से मासूम सी ख्वाहिशों की लिस्ट बना रहे, टूटे हुए दूध के दांत वाले बच्चों को हंसाना, उनके साथ खुद भी हंसना, अनजान लोगों को गले लगाना, हो करके खुशियां बांटना, यही तो काम है उसका हर साल। इस बार क्रिसमस के साथ साथ चुनावी मौसम भी है। चुनावी रैलियों में भी क्रिसमस की सजावट दिखती है, लाल सफ़ेद टोपियाँ नजर आती हैं, सेंटा की बग्घी आएगी, उसके लिए जिंगल बेल के गाने भी बज रहे हैं। लेकिन खुशियों के इस मौसम में जहर और नफरत उगली जा रही है। किसी को अमेरिका में घुसने से रोकने की बात हो रही है, किसी को अमेरिका से निकालने की बात हो रही है। कहीं मस्जिदों की दीवार पर कालिख पोती जा रही है तो कहीं गुरुद्वारों के खिड़कियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, और साथ ही अमरीका को दुनिया का सबसे महान देश बनाने की भी बात हो रही है। और इसलिए सेंटा कन्फ्यूज है। जिस ईसा मसीह का नाम वो बरसों से लेता आया है वो भी तो बाहर ही पैदा हुए थे, तो फिर बाहर से अमेरिका आने वाले सभी लोग खराब कैसे हो गए। अब जब वो अपनी गठरी लेकर निकलेगा, छोटे छोटे बच्चे उससे लिपटने को दौड़ेंगे, तो क्या वो उनसे पूछे कि कहाँ से आए हो, किस मजहब के हो, क्या वो उनका रंग देखे, उसकी नस्ल पता करे। वैसे भी सब कुछ उल्टा पुल्टा सा नजर आ रहा है। ये सर्द हवाओं और गर्म रिश्तों का मौसम होता था, इस बार मौसम गर्म है, लगता ही नहीं जैसे दिसंबर हो, लेकिन लोग ठंडे से हैं, सहमे से हैं। इन दिनों अखबारों में हर दूसरे दिन कहानी होती थी, दुकान में खरीदारी के बाद पैसा चुकाने वाली लाइन में खड़े ग्राहक ने अपने पीछे खड़े परिवार का बिल भी चुका दिया। इन दिनों खबर छप रही है कि मॉल की लाइन में खड़े एक शख्स ने दूसरे को आतंकवादी कहा, ओसामा बिन लादेन कहा। बेचारा सेंटा थोड़ा इग्नोर्ड भी महसूस कर रहा है। कहाँ तो सिर्फ उसी की बातें होती थीं। जब रात के अंधेरे में वो चिमनी के रास्ते ड्राइंग रूम में घुसेगा तो क्या नज़ारे देखेगा। उस पर लतीफ़े सुनाए जा रहे होते थे, यहाँ तक कि उसकी ढीली ढाली लाल सफ़ेद ड्रेस को भी काट छांट कर सेक्सी बनाकर खूबसूरत जवानियाँ माहौल को रंगीन बना रही होती थीं। सफ़ेद दाढ़ी के अंदर भी थोड़ी सी नॉटी सी स्माइल आ जाया करती थी। आज उसकी बात कम, आइसिस की बात ज़्यादा हो रही है। ٹی وی چینل اور اخباروں پر اسلام اور مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، سینٹا اندر کے پنوں پر یا پھر سیل کے پرچوں پر نظر آتا ہے۔ لیکن سینٹا چچا، آپ چنتا نہ کریں، فرنٹ پیج پر نہیں لیکن اندر کے پنوں پر کچھ اور کہانیاں بھی ہیں۔ کہانی ایک 8 سال کی مسلمان بچی کی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں سن کر گھبرا گئی اور اس کی ماں میلیسا نے فیس بک پر اس ڈری ہوئی بچی کی کہانی لکھ ڈالی۔ جواب آیا فوجی وردی پہنے ایک مہیلا کا، سلام علیکم میلیسا، اپنی بچی کو میری تصویر دکھا دیں اور کہیں کہ میں اسے برے لوگوں سے بچاؤں گی۔ اور پھر کئی فوجیوں نے آئی ول پروٹیکٹ یو کا ہیش ٹیگ چلا کر لوگوں کو ڈھانڈس دلانا شروع کر دیا۔ چچا، امریکہ تو یہ ہے، آپ چند سیاست دانوں کی باتوں سے کنفیوزڈ اور مایوس ہو جائیں گے تو کیسے چلے گا؟ آپ تو بس ایک بار زور سے ہو ہو کر کے ہنسیں، زور کی جھپی دیں اور جنگل بیل کو چاروں طرف گونجنے دیں۔ کرسمس اور نیا سال آپ سب کو مبارک۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، واشنگٹن۔
آپ کو برجیش اپادھیائے کی واشنگٹن ڈائری کیسی لگی ہمیں ضرور لکھیے گا۔ پچھلے کچھ سالوں سے کشمیر میں رگبی کھیل کی خوب دھوم مچی ہوئی ہے۔ عام طور پر اسے مردوں کا کھیل مانا جاتا ہے، لیکن کشمیر میں پرمپرا کی ہر دیوار کو توڑ کر اب لڑکیاں اس کھیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ کیا اسے وہاں کے سماج میں بدلاؤ کا ایک قدم مانا جائے؟ ایک رپورٹ کے ساتھ ماجد جہانگیر۔
سری نگر راج باغ کے گنڈن سپورٹس سینٹر میں ہر دن لڑکوں اور لڑکیوں کی اتساہ سے بھری یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ ان آوازوں کے ارد گرد گھومتا ہے رگبی کا کھیل، جو کشمیر میں بہت کم وقت میں اپنی ایک بڑی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ کشمیر میں رگبی کھیل کی شروعات ورش 2003 میں ہوئی۔ اس زمانے میں کشمیر میں صرف انگلیوں پر گننے والے چند بچے رگبی کھیل سے واقف تھے، لیکن آج کی تصویر بالکل بدل گئی ہے۔ آج کشمیر گھاٹی میں 3000 کے قریب بچے، جن میں لڑکیوں کی سنکھیا 1000 ہے، رگبی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ سری نگر عیدگاہ کی رہنے والی 17 ورشیہ ارتقا ایوب پچھلے 3 ورشوں سے رگبی کھیل میں حصہ لیتی آ رہی ہیں۔ ارتقا اس بات کو لے کر کافی خوش ہے کہ کشمیر میں لڑکیاں اب بڑھ چڑھ کر رگبی کھیل کا حصہ بن رہی ہیں اور میدان میں آ رہی ہیں۔ ارتقا بتاتی ہیں،
میں نے سوچا تھا میں بھی کروں رگبی، کہ میں بھی آگے بڑھوں جے کے رگبی میں، کیونکہ رگبی کا یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے لڑکیوں کے استر پہ، کیونکہ لڑکیاں رگبی نہیں کھیلتی۔ جب سے میں نے رگبی دیکھا پھر ساری لڑکیوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا، نیشنلس کھیلے، بہت آگے جائے، اپنے کشمیر کا روشن نام کا۔ پیرنٹس سے بھی بہت سپورٹ ملا، جب تک ایک اچھا پلیئر بننے میں نے بہت اسٹرگل کیا۔ آج تک اسٹیٹ لیول کھیلا، ڈسٹرکٹ لیول کھیلا۔
لگن کے ساتھ کھیلنے والی 18 ورشیہ افرا الطاف پچھلے 1 سال سے رگبی کے میدان میں اتری ہیں۔ پہلے افرا بیڈمنٹن کی کھلاڑی تھیں۔ لڑکیوں کا کھیل کے میدان میں آنے کو افرا سوچ میں بدلاؤ کا نتیجہ مانتی ہیں۔
جب بھی میں نے یہاں پہ دیکھا کہ لڑکیاں رگبی کھیل رہی تھی، مجھے لگا نہیں، مجھے بھی جانا چاہیے اس گیم میں۔ اور بہت ساری لڑکیاں ہیں، آلموسٹ آج کل لڑکیاں بھی آگے جا رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز۔ تو جتنی بھی لڑکیوں میں ٹیلنٹ ہے ان کو آنا چاہیے آگے، ان کو اپنا جو وہ ٹیلنٹ ہے ان کو دکھانا چاہیے۔ پہلے کے جو لوگ تھے ان کی تھنکنگ تھی کہ نہیں، لڑکی کو نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے اچھا نہیں ہے وہ سب۔ لیکن اگر ایک لڑکی میں ٹیلنٹ ہے، شی شوڈ کم، اس کو آنا چاہیے، اس کو اپنا وہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو دکھانا چاہیے۔ رگبی بہت ہی اچھی گیم ہے۔
کشمیر کے کچھ ہنر مند لڑکوں نے رگبی میچز کو راشٹریہ اور انتراشٹریہ سطح پر کھیلا۔ 20 ورش کے اشفاق احمد لون ورش 2012 سے رگبی کھیل کا حصہ بن چکے ہیں، جنہوں نے ایک انتراشٹریہ اور 4 راشٹریہ رگبی میچ کھیلے ہیں۔ اشفاق رگبی کو کیریئر کے طور پر اپنانے کی بات کرتے ہیں۔
بہت اچھا فیل کر رہے ہیں کہ یہاں پر لڑکیاں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، ابھی سر یہاں پر بہت ساری لڑکیاں بھی ابھی کھیل رہی ہیں جن کو میں ٹرین کر رہا ہوں۔ یہ میری دل کی خواہش ہے کہ میں رگبی کھیلوں اور دوسروں کو بھی کھلاؤں، کیونکہ اب میں اپنے جو محلے میں جہاں میں زرین کوٹ میں رہتا ہوں، ابھی میں وہاں پر اپنے انڈیویجولی بچوں کو ٹرین کر رہا ہوں، گرلز کو بھی اور بوائز کو بھی۔ ابھی تو میرے پاس کم سے کم 150 بوائز اور گرلز ہیں۔ بچوں کو اس کا مطلب محسوس ہونے لگا کہ سپورٹس ہے کیا، اصلی میں چیز ہے کیا۔
کشمیر میں بڑی سنکھیا میں بچوں کا کھیل طرف رجحان بڑھنے کو खेलों के कोच कश्मीर में हालात को बेहतर होने से ताबीर करते हैं। कश्मीर रग्बी एसोसिएशन के आयोजक और कोच इकबाल अहमद बताते हैं।
आपको पता है कि काफी देर तक टर्मोइल था कश्मीर में, वी वर शेड्स अंडर द शैडो ऑफ मिलिटेंसी, तो उस वजह से लड़कियां बाहर नहीं आ रही थी। फिर एक वेव आ गई जब लड़कियों ने रग्बी को ऑप्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि एक फ्रस्ट्रेशन आ गई थी कश्मीरी यूथ्स में, इनके हर रोज हड़ताल, कर्फ्यू, हालात खराब, तो एक ही टाइम पे बच्चे बाहर आके स्पेशली वुमेन फोक हमारे ने आके, आज माशाल्लाह हमारे पास 1000 से ज्यादा लड़कियां, बड़ी लड़कियां, छोटी लड़कियां, हर एक एज ग्रुप में हमारी लड़कियां अभी मोर देन 1000 है।
ये पूछने पर कि आखिर रग्बी कश्मीर में इस कदर इतने कम वक्त में मशहूर क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो वो बताते हैं।
भी एक फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, इसमें नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट भी है, लेकिन हमारी जितने भी बच्चे हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, दे ऑलवेज लव टू प्ले फुल कॉन्टैक्ट रग्बी, तो इसमें इनको एक ओपन फील्ड मिला, क्योंकि कश्मीर बेस्ड एसोसिएशन है, बच्चों को ज़्यादा चांस मिलता है आगे जाने के लिए, क्योंकि कश्मीर में पनपी है ये स्पोर्ट, और काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे पास, कोचेज हैं हमारे पास, एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, जो इनको उस लेवल तक चाहते हैं जिस लेवल में ये मतलब आगे जा सकते हैं। इनके लिए एक ओपन वास्ट फील्ड है, इसीलिए वुमेन फोक ने अदर स्पोर्ट्स को छोड़ के रग्बी को ऑप्ट किया। तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, फैसिलिटीज सरकार देती है हमें, लेकिन जहां तक फील्ड की बात है, हमारे पास अभी तक एक भी सेपरेट फील्ड है नहीं।
अगर कश्मीर की युवा पीढ़ी में खेलों के प्रति इसी तरह ये दिलचस्पी और जोश बरकरार रहता है, तो कश्मीर के उभरने वाले ये रग्बी खिलाड़ी कामयाबियों की आखिरी मंजिलों को छूकर ही दम लेंगे और कामयाबी की एक नई दास्तान की इबारत इन्हीं के हाथों से लिखी जाएगी। माजिद जहांगीर, BBC हिंदी, श्रीनगर।
और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। अमल आ चुके हैं स्टूडियो। अमल
जी, आज के सभी अखबारों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो समझौते हुए हैं उन्हीं की खबरें छाई हुई हैं, और दोनों के बीच लगभग कुल 16 समझौते हुए हैं। और जो एक और बड़ी खबर है जिसे हिंदुस्तान हिंदी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया समेत लगभग सभी अखबारों ने शामिल किया है, इसके अनुसार दिल्ली के जो ऑड इवन फार्मूला जो है उसकी जो खबर प्रमुखता से शामिल की गई है। इसके अनुसार जो नियम तोड़ने वाले होंगे उन पर 2000 रुपये का जुर्माना उन्हें भरना होगा, और 1 जनवरी से 15 दिनों के लिए ट्रायल बेस पर शुरू होने वाले इस नियम में 2 पहिया वाहनों को छूट मिली है, और साथ ही उन महिलाओं को भी छूट रहेगी जो अकेले गाड़ी चला रही होंगी या फिर उनके साथ 12 साल की उम्र तक का बच्चा होगा। वहीं जो VVIP लोग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश समेत जो VVIP और लोग होंगे उनको भी इसमें छूट दी गई है। और हिंदुस्तान की एक और खबर है जिसके अनुसार चीन के 10 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है प्रदूषण को लेकर, इसमें चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से के अधिकतर शहर शामिल हैं। वहीं एक और खबर है जिसका शीर्षक है जेटली का केजरीवाल पर हमला, इसमें अरुण जेटली कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, और अगर केंद्र का कोई मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता तो देश भर में हंगामा हो जाता। वहीं नई दुनिया की एक खबर का शीर्षक है प्रधानमंत्री की चुप्पी पर राहुल ने उठाया सवाल, इसके अनुसार राहुल ने DDCA विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बचाव पर सवाल उठाए हैं। वहीं NBT में दाऊद से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प खबर है। अखबार लिखता है कि कल तय होगा दाऊद का वारिस, और अखबार लिखता है कि दाऊद इब्राहिम शनिवार को 60 साल उनके पूरे होने हैं, इसकी उनकी बर्थडे पार्टी में उसके वारिस की घोषणा हो सकती है। खबर के अनुसार चूंकि उनके बेटे ने इनके कामों से जुड़ने से मना कर दिया है, इसलिए उनके भाई अनीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं पिटाई के वीडियो ने बचाया नाम से एक खबर है, जिसमें सऊदी गए युवकों ने खुद पर हुए जुल्म का वीडियो बनाया और उसके वायरल होने के बाद भारत सरकार मदद के लिए आगे आई।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान क्रेमलिन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा कि भारत रूस को एक भरोसेमंद मित्र मानता है। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में समझौते के तहत दमिश्क के बाहरी इलाकों से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन स्थित संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने ये जानकारी दी है। दक्षिणी अमरीका में कई चक्रवाती तूफानों ने तबाही मचा दी है और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होने की खबरें हैं और मिसिसिपी के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा की है। श्रीलंका में कैथोलिक चर्च ने एक निर्देश जारी कर त्यौहार के दौरान सभी चर्चों में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चर्च ने इस तरह का निर्देश जारी किया हो। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।